हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 313 विराज के कुछ लोग सुनैना और आदित्य के विला पर पिछले कुछ दिनों से नज़र रखे हुए थे, किंतु उस घर में तब से कोई हलचल नहीं हुई थी। बस एक दो बार रवि किसी काम से वहां आया था और गीता, ड्राइवर, चौकीदार, माली के अलावा घर का कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया था। विराज तक ये सारी खबरें पहुंच रही थीं और वो इस बात से बहुत अधिक व्याकुल हो रहा था कि आखिर जिसके लिए उसने ये सब किया, सुनैना, वो अब तक उसके हाथ नहीं लगी थी। विराज का घर। विराज ने अभी-अभी किसी से फ़ोन पर बात करके अपना मोबाइल फ़ोन बेड पर गुस्से में फेंका और दोनों हाथों से अपने बालों को सहलाते हुए एकदम निराश होकर बोला, कहाँ हो तुम सुनैना, आखिर कहाँ हो? पिछले 4 दिनों से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें पागलों की तरह। अब तो तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति भी नहीं है हम दोनों के बीच। फिर भी उसके कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर से निकलती हुई उसकी बहन अवंतिका वहाँ रुक गई। उसे विराज के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि विराज के साथ कमरे में भला कौन है जिस पर वो इस तरह चिल्ला रहा है। ये सोचते हुए अवंतिका ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, भाई, विराज भाई, आप ठीक तो हो ना? बिना दरवाज़ा खोले विराज ने अंदर से ही जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूँ, अभी जा यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। अवंतिका ने बहुत ही मासूमियत से कहा, भाई, क्या मैं आपके लिए किसी पराई हो गई हूँ? मुझसे भी बात नहीं करोगे आप? और बात भले ही ना करना, कम से कम दरवाज़ा तो खोलो। क्या गिरा है, कुछ टूट गया क्या? अवंतिका को सच में अपने भाई की चिंता थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो देख रही थी कि विराज बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसा वो पहले बिल्कुल भी नहीं करता था। आजकल वो किसी से कम ही मिलता जुलता था, किसी भी वक्त बाहर से आता और किसी भी समय बाहर चला जाता, किसी के पूछने पर भी कुछ नहीं बताता था। अवंतिका अभी भी वहां से नहीं गई थी, वो दरवाजे पर ही रुकी हुई थी और उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। विराज बार बार उसे मना नहीं कर पाया और न ही उसे वहां से जाने के लिए कह पाया। आखिरकार खुद को शांत करते हुए विराज ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अवंतिका एकदम से कमरे के अंदर आकर विराज की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, भाई, आप ठीक हो ना? और क्या चीज़ गिरने की आवाज़ आई थी? विराज ने झूठा बहाना बनाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, ग्लास गिर गया था बस, क्या ज़रा ज़रा सी बात पर फ़िक्र करती हो तुम भी? उसके बाद उसने अवंतिका को इधर उधर की बातों में बहला फुसला दिया, क्योंकि वो सुनैना के पीछे पड़ा हुआ है। ये बात वो अवंतिका के सामने स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसकी बहन को उसके इस जुनून के बारे में पता चला तो वो उसे ज़रूर मना करेगी। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से किसी के कमरे के पास आने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे का दरवाज़ा खुला ही हुआ था। जैसे ही विराज ने नज़र उठाकर उधर देखा तो उसे वो शख्स नज़र आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है, आप मनु दी? सामने दरवाजे पर खड़ी मनस्वी को देखकर विराज के मुंह से ये बात एकदम निकल गई। उसकी बात सुनकर अवंतिका ने भी पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, क्या हुआ भाई, आप इतने हैरान क्यों हो? और वैसे भी मनु दी यहाँ क्यों नहीं आ सकती? अवंतिका की बात सुनकर मनस्वी मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आती हुई बोली, थैंक यू सो मच अवंतिका, नहीं तो शायद मुझे दरवाजे से ही वापस अपने घर जाने को कह देते। विराज जल्दी से सफाई देते हुए बोला, अरे नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जल्दी यहाँ पर आती नहीं है, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मनस्वी ने बहुत ही अलग अंदाज में कहा, तुम्हें सरप्राइज देने ही तो आई हूँ मैं। उसके इस बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए विराज ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अवंतिका उससे सामान्य हालचाल और बातें करने लगी। विराज समझ रहा था कि मनस्वी का यहाँ आने का मकसद कुछ और ही है, और अवंतिका के सामने वो ना तो इस बारे में कुछ पूछ सकता था और ना ही पता कर सकता था। इसलिए उसने अवंतिका से कहा, अवी, जाकर दी के लिए कुछ लेकर आओ, उन्हें भूखी प्यासी ही बैठा होगा क्या? आखिर आज ही कितने दिनों बाद ही तो हमारे घर आई हैं। विराज की बात सुनकर अवंतिका ने अपने सिर पर हाथ मालते हुए कहा, अरे हाँ, बातों में लगकर मैं तो भूल ही गई, मैं अभी मेट को बोलकर आती हूँ दी, आप क्या लोगी? बताओ, कोई स्पेशल कॉफ़ी या फिर नॉर्मल? मनस्वी ने एकदम सामान्य भाव से मना करते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रहने दो अवंतिका। अवंतिका अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं भाई, जब तक आप कंपनी दो दी को, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतना बोलकर अवंतिका वहाँ से चली गई। विराज ने उसके जाते ही उठकर इधर उधर देखते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर शक भरी निगाहों से मनस्वी की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, और प्लीज कोई नाटक मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, अभी वो अवंतिका फिर से आ जाएगी। मनस्वी ने बहुत ही आत्मविश्वास से उठकर खड़े होते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं तो उसके सामने भी बता सकती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ, लेकिन तुम ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसका मतलब जरूर तुम कुछ गलत कर रहे हो। विराज ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या चाहती हैं आप आखिर? मनस्वी ने अपनी भौहें चढ़ाकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, और तुमने ही तो कहा था कि इसमें मेरा भी फायदा है। अक्षत काफी देर तक रागिनी के घर पर रहा और अपनी तरफ से उसने रागिनी को इस बात पर पूरा विश्वास दिला दिया था कि उसने गलती से अपना सब कुछ लेना के नाम कर दिया है। ये सब जानने के बाद उसे रागिनी से वही प्रतिक्रिया मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बार बार इस बारे में ही बात कर रही थी। इस बीच उसने एक बार भी अपनी गर्भावस्था, बच्चे, अक्षत या अपने बारे में बात नहीं की। उसे बस इस बात की चिंता थी कि अक्षत को उसका सब कुछ वापस मिल जाए। उसे परेशान देखकर अक्षत ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे समझाकर कहा, अरे डोंट वरी अबाउट दैट, वो मेरे पैसे ले सकती है, लेकिन मेरा नाम, शोहरत और हुनर तो नहीं ले सकती ना, मैं सब कुछ फिर से हासिल कर लूंगा, और मैं वादा करता हूँ रागिनी, तुम्हें और हमारे बच्चे को बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। अक्षत इतनी देर में काफी बार उसे ये बातें समझा चुका था, इसलिए बार बार ये सब सुनकर रागिनी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यू आर गिविंग मी हेडेक अक्षत, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुमने अपना सब कुछ उस लड़की के नाम कैसे कर दिया, अभी कितने दिन हुए हैं तुम दोनों के रिश्ते को और तुम्हें समझ नहीं आया कि वो लड़की एक गोल्ड डिगर है। अक्षत ने बहुत ही मासूमियत से कहा, अरे लेकिन कैसे समझ में आएगा, वो तो इतनी अच्छी थी और उसने खुद कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो मैंने भी बस उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए ऐसा किया था, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वैसे भी थोड़ी गलती तो मेरी भी है ना, हमारा कौन सा आधिकारिक ब्रेकअप हुआ, वो तो हम दोनों की वजह से ही उसने ऐसा किया। उसकी बातें सुनकर रागिनी ने पूछा, अच्छा तो क्या तुम अभी भी उस लड़की से प्यार करते हो? अक्षत ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं उससे प्यार करता तो फिर मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता ना, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है रागिनी, और मुझे तुम्हें नहीं खोना चाहिए था, तुम ही मेरे लिए बिल्कुल सही हो। अक्षत की ये बात सुनकर रागिनी ने उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अक्षत का बंगला।
स्वीटी और नैना दोनों एक साथ परेशान वहां बैठी हुई थीं और दोनों ही अक्षत का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि उसे वहां से रागिनी के घर गए हुए काफी समय हो गया था। सिर्फ नैना को इस बारे में पता था। स्वीटी को लग रहा था कि अक्षत अब तक शूटिंग से वापस नहीं आया है और इसीलिए नैना इतनी परेशान है और उसका इंतजार कर रही है। नैना को परेशान देखकर स्वीटी ने उसे सलाह दी, हो सकता है अक्षत सर का लेट नाइट शूट हो, आप एक बार कॉल करके पूछ लो दी। स्वीटी की ये बात सुनकर नैना ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और फिर उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के लगभग 8 बज रहे थे और उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि आज अक्षत अपनी किसी भी शूटिंग पर नहीं गया है, बल्कि वो अपने प्लान के अनुसार रागिनी से मिलने गया है, लेकिन ये बात उसने स्वीटी को नहीं बताई। वो अक्षत प्लान के हिसाब से पिछले दरवाजे से अंदर आने वाला था, इसलिए नैना बार बार उसी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। स्वीटी ने खुश होते हुए कहा, लगता है आ गए सर। स्वीटी के चेहरे पर तो उम्मीद की चमक नजर आ रही थी, लेकिन नैना दूसरी तरफ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये बिल्कुल भी तय नहीं था कि अक्षत सामने के दरवाजे से आएगा, और अगर वो आता भी तो इस तरह से घंटी तो नहीं बजाता, क्योंकि उसके पास पहले से ही घर की चाबियां थीं, और अक्षत के अलावा इस वक्त किसी के आने की नैना को उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर दरवाजा खोलने भी नहीं गई। कुछ देर घंटी बजने के बाद एक नौकरानी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बंगला काफी बड़ा था, इसलिए हॉल से मुख्य दरवाजा इतना साफ नजर नहीं आता था, तो स्वीटी और नैना दोनों को ही समझ नहीं आया कि दरवाजे पर कौन है। इसलिए नैना ने आवाज लगाते हुए पूछा, कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ भाभी, दरवाजे की तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। तो नैना तो पहचान गई कि ये विवान है, क्योंकि उसे भाभी सिर्फ वही बुलाता है। लेकिन स्वीती को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अभिनेता विवान कपूर को भी यहाँ पर देखेगी, और उसे ये भी नहीं पता था कि विवान अक्षत का भाई है। इसलिए वो एकदम अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि लेटेस्ट रिलीज उसकी पसंदीदा फिल्म का अभिनेता, जिसे कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ उसने बड़े पर्दे पर देखा था, वो अब खुद ही उसके सामने खड़ा हुआ है। विवान, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? नैना ने उसकी तरफ आगे आते हुए पूछा। क्रमशः